आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ और इस रिपोर्ट में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हाल ही में जारी की गई 2025 जनरेशन जेड वेलबीइंग इंडेक्स के अनुसार पिछले वर्ष जनरेशन जेड, जिन्हें की जेन जी भी कहा जाता है, कि 90% लोगों ने यौन स्वास्थ्य जाँच यानी कि सेक्सुअल हेल्थ चेक्स नहीं करवाए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि केवल 6% जेंजी ऐसे थे जिन्होंने अपने त्वचा स्वास्थ्य मूल्यांकन यानी कि स्किन हेल्थ असेसमेंट्स करवाई हो। ये जो निष्कर्ष हैं, ये युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों में सबसे आम कैंसरों में से एक, युवा संचारित संक्रमण यानी कि STI और मेलेनोमा की बढ़ती दरों के बावजूद आए हैं। ये राष्ट्रीय रिपोर्ट डिजिटल यूथ एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म Year 13 द्वारा स्केप के साथ साझेदारी में तैयार की गई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पर्पस बिल्ट स्टूडेंट अकोमोडेशन यानी PBSA और स्टूडेंट एंगेजमेंट का संचालक है। आपको बता दूं कि कई छात्र यहां रहते हैं, जिसमें कि 40% छात्रों ने माना है कि पिछले 12 महीने में उनकी कोई स्वास्थ्य जाँच नहीं हुई थी और पिछले साल की तुलना में दरों में वृद्धि के बावजूद प्रमुख कल्याण संकेतकों यानी वेलबीइंग इंडिकेटर्स में न्यूनतम सुधार देखा गया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ी रीति जेरत, जिन्होंने अपना अनुभव हमसे साझा किया। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने लास्ट अपना सेक्सुअल हेल्थ चेक कब करवाया था और आपके आसपास में जो आपके दोस्त हैं, क्या इस तरह के टॉपिक्स पे आपकी बातचीत होती है उनसे?
आई डोंट थिंक सो, कभी हमने इस टॉपिक पे कभी बात ही नहीं करी है। मतलब सेक्सुअल चेकअप के बारे में तो बिल्कुल नहीं करी है, एंड आई डोंट थिंक मैंने कभी कराया है, जस्ट बिकॉज इट्स कंसिडर्ड अ टैबू बैक होम एंड यू मतलब डिस्कस भी नहीं कर पाते आप किसी के साथ वो पॉइंट, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, मतलब फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस कर पाते हो, बट आपके टॉपिक निकलता ही नहीं है कभी। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारी कॉस्ट भी देखते हैं हम कि कितना महंगा है यहाँ। अगर हम घर पे होते, बैक होम होते, तो मे बी कंसिडर कर लेते, बट वो भी टाबू होता है क्योंकि आपके पेरेंट्स के साथ जाना पड़ता है। आई डोंट थिंक योर पेरेंट्स और आप खुद कंफर्टेबल हो गए उस बारे में बात करने के लिए। मुझे लगता है कि मैंने खुद नहीं कराया ये, क्योंकि मुझे भी लगता है कि चाहे मैं करा भी लूँ, बट मेरे दिमाग में भी ये टाबू आता रहता है कि क्यों कराना है, ऐसा तो जरूरी थोड़ी है चेकअप कराना।
मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो हमारी जेन जी की जनरेशन है, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को हम इतना ज्यादा ओपनली डिस्कस करते हैं, जैसे डेटिंग कल्चर है और एक से ज्यादा पार्टनर्स भी रखते हैं, सो ऐसे स्थिति में इस तरह का जो मुद्दा है सेक्सुअल हेल्थ, उसको इतना जोर क्यों नहीं दिया जाता?
आई थिंक क्योंकि जेन जी भी अभी आई थिंक कम्फर्टेबल है, मतलब डेट करने का तो देयर आर आई नो लोग वेरियस पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कोई इतना, चलो अवेयरनेस तो है बट लोग हेजिटेंट है कि क्यों कराने की जरूरत है। आई थिंक सब सही होगा, क्यों करना है।
यदि मैं आपसे पूछूं कि अगर आप कल को किसी से मिलती हैं और अगर आपका पार्टनर आपसे ये कहता है कि आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ रिपोर्ट्स मुझे पहले दें, इससे पहले कि हम इस रिश्ते को आगे लेके जा सकें या हम आगे बढ़ें, तो आपको पर्सनल लेवल पे कैसा लगेगा?
मैं सोचूंगी ऐसा क्यों करना है, मतलब इतना ट्रस्ट नहीं है उसको क्या मेरे से?
नहीं, पर ये फिर आप दूसरी तरफ अगर आप हैं और आप ऐसा किसी से बोल रही हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन कोई और आपसे बोल रहा है तो वो गलत हो जा रहा है। तो बात यही है कि इस चीज को देखा बहुत अलग तरह से जाता है, ऑफेंस की तरह से देख लेते हैं ना।
हाँ जी, पूछ रहा है।
राइट, और अपने आसपास क्या आप किसी को भी जानती हैं जिन्होंने पिछले एक साल में सेक्सुअल हेल्थ या फिर स्किन हेल्थ चेकअप करवाया हो या किसी भी तरह का हेल्थ चेक करवाया हो स्टूडेंट्स में?
मतलब हेल्थ चेक तो मैंने खुद कराया है क्योंकि वीजा के लिए चाहिए होता है
जी,
बट मेरे आसपास और कोई ऐसा नहीं है जिसने एक्चुअली मतलब बिना वीजा के कंडीशन के लिए ऐसे ही मेडिकल चेकअप कराया हो।
आप भी एक स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहती हैं, तो आपकी स्टूडेंट अकोमोडेशन में क्या इस तरह के कोई इनिशिएटिव्स या कदम लिए जाते हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ी में इन चीजों के बारे में और जागरूकता बढ़े?
नहीं मतलब आई थिंक ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं हमारे अकोमोडेशन एक्ट टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट दिस टॉपिक.
और अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं.
यूनिवर्सिटी तो ऑब्वियसली आपको इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू बता देती है, बट ऐसा वर्बल कम्युनिकेशन तो आई डोंट थिंक यूनिवर्सिटी भी ऐसा कुछ करती है.
तो अगर मैं इसी सर्वे की बात करूं तो 30% से ज्यादा लोगों ने ये बोला है कि वो स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि वो डिप्रेशन से जा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है, या फिर उन्हें किसी भी तरह की कुछ ना कुछ एंजाइटी जरूर रहती है. और इसमें जो मेन मुद्दे उन्होंने बताए हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग और महंगाई बढ़ गई है. उन्हें अपने फ्यूचर को लेके यानी भविष्य को लेके काफी चिंता रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके आसपास आपके जो दोस्त हैं या आप भी अपने बारे में बता सकती हैं कि किस तरह के मेंटल हेल्थ बैटल्स से आप लोग गो थ्रू करते हैं.
हाँ मैं खुद कहना चाहूंगी, जैसे मेरी ग्रेजुएशन सितंबर में है तो मुझे उससे पहले जॉब चाहिए तो दैट मैं आगे का सोच पाऊँ ऑस्ट्रेलिया में रहने का. तो वो एक स्ट्रेस तो रहता है दिमाग में कि आपने वीजा अप्लाई करना है तो आपको उससे पहले जॉब चाहिए, फाइनेंसेस देखने होते हैं कि यहाँ इतना पैसा लग रहा है आपका वीजा, इंग्लिश टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, पुलिस वेरिफिकेशन है, उसके लिए अलग अलग एक्सपेंसेस लगते हैं. तो उसके लिए आपको कम से कम $5,000-6,000 की सेविंग करनी पड़ती है. इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. तो काफी स्ट्रेस तो रहता है.
तो इन सारी चीजों को डील करने के लिए क्या आपने कभी कोई प्रोफेशनल हेल्प ली है?
मतलब ली है, मैं डिनाई नहीं करूंगी, बट आजकल ऐसा हो गया है कि मैं मतलब आई डोंट टॉक टू माय साइकोलॉजिस्ट, कभी कभार ही हो पाता है. इट्स नॉट अ रेगुलर कम्युनिकेशन, वो जब फ्री होता है या मैं फ्री होती हूँ और हम लगता है कि हम सेशन ले सकते हैं तो ले लेते हैं कभी कभार, महीने में 2 बार.
जी, और प्रोफेशनल हेल्प के अलावा अगर मैं पूछूं तो क्या आप अपनी फैमिली से ये चीज डिस्कस करने में कंफर्टेबल या सहज महसूस करती हैं, या आपके अपने दोस्तों से आप ये बातचीत कर पाती हैं?
हाँ जी, जैसे कल ही मैं अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करी थी तो वो भी कह रहे थे कि प्रेशर तो होता है, मतलब बच्चे पे भी है, उसके पेरेंट्स पे भी है कि उसको आगे का सोचना होता है, घर का भी सोचना है, चाहे वीजा का सोचना है, तो उनपे भी प्रेशर आता ही है कि उनको बच्चे को प्रोवाइड करना पड़ता है उस कंडीशन से.
जहाँ रीति ने कुछ गहरे सवालों के जवाब हमें दिए हैं, वहीं हमारे साथ जुड़े क्रिस नम, जो कि स्केप अकोमोडेशन के जनरल मैनेजर हैं.
माय नेम इज क्रिस नम एंड आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस ESG एट स्केप. एंड दिस ईयर For the third year running, we've partnered with a firm called Year 13, who specialize in supporting young adults through that transition from school into their first year out of school, whether it be further education or work. And we run a survey called the Wellbeing Index. We ask about 60 questions to 18 to 24 year olds from around Australia. We get over 3,000 responses. And it's a survey that covers questions ranging from physical health, mental health, diet, and sleep habits. The primary findings from this year's survey were in relation to physical health. There were some really good statistics. Two-thirds of people saying they're in excellent, very good, or good health. And some supporting evidence around that was that 75% of respondents are saying they exercise at least regularly, at least weekly, 80% of them saying I don't smoke and I don't vape, and also 50% of them saying I either never or only rarely drink alcohol. So some really healthy behaviors around physical health.
आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ का मुद्दा बहुत ही जोरों से उजागर हुआ है.
The story is not so rosy in relation to mental health, with almost half, 46% saying they have only fair or poor mental health. And some stats backing that up is that in the survey, 55% of people say they're suffering from anxiety, and 34%, a third, say they're suffering from depression. So some pretty high rates of self-reported mental health issues.
Right.
One of the other really interesting facts was around, we asked a question around, over the last 12 months, have you had any of the following professional health services? And the number one, it's a long list of, you know, things that you can tick. So the number one was they've had a mental health check, 31% saying they have had a mental health check, 26% saying they've had the flu vaccination, 10% saying they've had a sexual health check, and then there's a range of others which had quite low percentage answers. The highest response to that question was none. I have not had any of the following checks, and 40% of people said they had not had any kind of health support over the last 12 months. So combined with the relatively high reporting around mental health, combined with 40% of people saying they haven't had any professional medical support.
क्रिस बताते हैं कि तीन ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिन्होंने युवाओं या फिर जेन जेड के तनाव स्तरों को बढ़ा रखा है.
When asked, you know, what's the primary thing that's negatively affecting your well-being, they said, I'm worried about my future. And there's also some detail there around, you know, is my job going to even exist in the future with AI? What am I training for? I don't have certainty. I'm figuring out my future. Then they're worried about fatigue and burnout, balancing study, work, relationships, etc. And then cost of living is the sort of top three things that negatively affect Gen Z well-being. Number one is cost of living and housing affordability. But I think really interestingly, number two, just behind that, is gender-based violence. And then number three is climate change, with 59% of people saying they're concerned about climate change. That's up 10% from last year. So, you know, an awareness of big themes, I think both things that affect them directly, economically, etc., and then these broader issues that they're concerned about.
इसी सर्वे से ये पता चला है कि केवल 10% छात्र या स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले एक साल में अपना सेक्सुअल हेल्थ चेकअप करवाया हो. जहां ये आंकड़े चिंताजनक हैं, हमने क्रिस से पूछा कि एक स्टूडेंट अकोमोडेशन और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में काम करने के रूप में ऐसे कौन कौन से कुछ कदम हैं जो उनकी संस्था और अन्य संस्थाएं या फिर यूनिवर्सिटीज उठा सकती हैं.
As SCAPE, we offer a lot of support to our residents in terms of free access to education and partners. So, for instance, we offer training through Headspace, which is a mental health charity for supportive conversations. So this is an interesting one around when we asked, you know, who do you rely on as your primary support network? 80% said my friends and 60% said my family. So family and friends are the primary support network. So we offer training for those residents so that they can be that supportive friend in a time of need and maybe offer that advice, like, hey, maybe get a checkup. Thank you.
SBS News के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.